جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو ہم علم سیکھیں رب کعبہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلا شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو احیاء کرے یعنی سنتوں کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مجیب مفتی محمد جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں ناظرین کی سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھ۔
میرا نام محمد ثاقب رضا عطاری ہے، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قرآن پاک کو قمیض کی سائڈ پاکٹ میں رکھنا کیا جائز ہے؟
جی، بہت سے لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ قرآن پاک کہا، اور عام طور پہ لوگ موبائل کے حوالے سے بھی یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سافٹ ویئر ہم نے انسٹال کیا ہوا ہے اور قرآن پاک بھی موبائل میں موجود ہوتا ہے، تو دونوں ہی آپ جواب ارشاد فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پاک کو ادب والے مقام پر ہی رکھنا چاہیے۔ تو اب ہماری باڈی میں جو ہمارے لباس ہے، اس لباس کے حوالے سے جو ادب کے قریب جو جگہ ہے قرآن پاک رکھنے کے حوالے سے، وہ ہے اپنے سینے کے قریب جو جیب ہوتی ہے اس میں رکھا جائے۔
ٹھیک ہے،
سائٹ والی جیب جو ہوتی ہے اس کے اندر، چونکہ اٹھنے بیٹھنے میں پھر جو بھی چیز اگر ہماری سائٹ جیب میں ہو تو بسا اوقات وہ دبتی ہے، یا اگر ہم کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جیسے کار میں بیٹھے ہیں اور مزید افراد بھی بیٹھیں گے تو جو بھی چیز سائڈ جیب میں ہوتی ہے وہ دبتی ہے۔ اور چونکہ یہ جو مقام ہے سائڈ جیبیں، یہ ادب والا مقام نہیں ہے، تو یوں قرآن پاک اگر رکھنا ہے تو پھر اس کو سامنے والی جیب پر ہی رکھا جائے، یا اس کے لیے کوئی غلاف یا کوئی بیگ ایسا رکھا جائے جو نمایاں طور پر ایسی جگہ رکھنے میں آئے، اٹھانے میں آئے کہ جس کی بے ادبی نہ ہو، تو سائڈ جیب میں قرآن پاک نہ رکھا جائے۔
موبائل کا کیا کہیں گے؟ یعنی یہ تو آپ نے وہ قرآن پاک جو چھوٹے سائز میں موجود
ہے، جی جی،
تو موبائل کا کیا؟ اب اس میں بھی سافٹ ویئر ہیں، حدیث کے بھی سافٹ ویئر ہوتے ہیں، صراط الجنان بھی ہے، اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔
اب رہا معاملہ جو موبائل کا ہے، تو موبائل صرف اور صرف قرآن پاک پر مشتمل نہیں ہوتا، اور موبائل کی اسکرین بھی جو ہے اس میں جو دیکھا جائے گا تو وہی چیز سامنے آئے گی۔
ٹھیک ہے،
تو اب اس کے اندر اگر اپنی سیلفی کوئی دیکھے گا تو اپنی چیز سامنے آئے گی، قرآن پاک یا احادیث یا کوئی بھی ٹیکسٹ وغیرہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہی چیز سامنے آئے گی جو اسکرین پر یہ دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ موبائل کی جو اسکرین ہے وہ بلیک ہی رہتی ہے۔ تو اس لیے اب موبائل کو چاہے سامنے والی جیب میں رکھیں یا سائڈ جیب میں رکھیں یا زمین پر بھی رکھ دیا جاتا ہے، اور جیسے عام طور پہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں بیٹھ کر تو زمین پہ رکھ دیا جاتا ہے، تو اس کو بے ادبی شمار نہیں کیا جاتا۔ ہاں، اگر قرآن پاک اسکرین پر جلوہ گر ہے،
یعنی وہ
موبائل کی اسکرین پر جلوہ گر ہے، اب وہ اسکرین آن ہے، اس حالت میں بھی سائڈ جیب میں نہ رکھیں، اس حالت میں پھر اس کو زمین پر نہ رکھیں کہ اب یہ ادب والے مقام پر نہیں ہے۔ ہاں، اگر اسکرین آف کر دی گئی ہے یا کوئی اور سا سافٹ ویئر یا کوئی اور آپشن کے اندر بندہ ہے تو اب بھلے اس صورت میں اسکرین آن رہ گئی، اب وہ سائڈ جیب میں ہے یا زمین پہ رکھنے میں پھر بے ادبی اس کو پسند نہیں سمجھا جاتا، لیکن قرآن پاک جو سائڈ جیب میں رکھنے کے حوالے سے جو پوچھا گیا ہے تو وہی پاکٹ سائز جو قرآن پاک ہوتا ہے، جو عام طور پہ حفاظ زیادہ اپنے پاس رکھتے ہیں، تو اب ان کو کم از کم اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ سائڈ جیب میں या फिर जो पेंट शर्ट वाली जो जेबें होती हैं सामने की या बैक वाली, इन जगहों पे कुरान पाक को ना रखा जाए कि इन मकामात पे रखने से इन देखने वाला यही समझता है कि ये कुरान के अदब वाली जगह नहीं है।
एक हाफिज को मैंने देखा जमील साहब, उन्होंने पांच पांच पारे करके अलग अलग उसकी पूरी जिल्द करवा लिया या उसको उसकी बैंडिंग ऐसी करवा ली कि पांच पांच पारे, और पूरा कुरान पाक रखना भी बाद का आजमाइश और ये वो, तो पांच पांच पारे। ये इसलिए मशवरा दे रहा हूँ कि जो ऐसे हुफाज हैं या वैसे भी आप आते जाते कहीं भी आप पढ़ते हैं कुरान पाक, इस तरह बाकायदा देखकर, बिल्कुल देखना चाहिए, देखकर पढ़ेंगे तो उसमें देखने का भी सवाब है, बावजू छूने का भी सवाब है, कुरान पढ़ने का भी सवाब है। तो उन्होंने पांच पांच पारे किए हुए कि जब ये होता है तो फिर वो ख़त्म, फिर आगे सिलसिला, तो लेके जाना सामने वाली जेब में रखना तो बड़ा कहा के आसान है। तो ये मशवरतन मैंने कहा चले अर्ज करता हूँ। अच्छा, जेब में होता है तो अब ज़ाहिर बाहर हैं, वाशरूम भी जाना है, कहीं और भी इस तरह के मामला होते हैं, तो उसमें क्या एहतियात है?
हाँ, ये भी अच्छी आपने तवज्जो दिलवाई है। तो जब कुरान पाक अगर हमारे पास मौजूद है, अगरचे वो नॉर्मली रैगजीन के गिलाफ में ही इसको रखा जाता है, लेकिन अदब यही है कि जब हमें कज़ाए हाजत के हवाले से वॉशरूम वगैरह जाना पड़े तो कुरान पाक को अंदर लेकर ना जाएं, बल्कि कुरान पाक को बाहर ही किसी अच्छी बाअदब जगह पर ही रख दिया जाए। इसका कोई ना कोई एहतिमाम करना होगा। जब जहन में ये बात आएगी कि मैंने इसको लेके नहीं जाना, तो इंशाल्लाह मुनासिब कोई ना कोई मकाम आपको मिल ही जाएगा।
ठीक है माशाल्लाह। कुछ मैसेज भी शामिल करते हैं, मैसेज बहुत ज़्यादा आना शुरू हुए हैं और जैसे ही प्रोग्राम अभी 5-7 मिनट होते हैं तो काफ़ी तादाद में सवालात माशाल्लाह आ जाते हैं। और जमील भाई, इस सिलसिले की खूबसूरती ये है कि हर सवाल निराला, यानी अलग सवाल होता है हज़ार जो जिसको मसला दरपेश होता है, और बिल्कुल जुदागाना और मुमताज़ जिसे कहें कि अभी अदब आदाब कुरान पाक की तिलावत, मेरे पास जो सवाल जमा हैं तो उसके अंदर ज़कात के हवाले से भी हैं, कसर नमाज पढ़ने के हवाले से भी हैं, शरी मन्नत के हवाले से भी हैं, यानी यूँ कहें तो कई मौजूद के बाकायदा सवालात का सिलसिला शुरू होता है। बहरहाल आप भेजते रहें, मैसेज भी आप करें, इसी तरह अपने सवाल भी रिकॉर्ड करें, हम कोशिश करेंगे उन्हें शामिल करें। कहते कोई शख्स अगर कहीं ज़ियारात के लिए 2 या 3 या 10 दिन के लिए निकले और 92 किलोमीटर ये सफ़र है तो नमाज कसर ही पड़ेगा?
उमूमी तौर पर इस तरह जो है ना वो टूर्स के लिए लोग निकलते हैं, जिसमें पाकिस्तान टूर आप कह लें, तो मुख्तलिफ अंदाज से लोगों के टूर्स होते हैं, कोई पिकनिक के हवाले से उसका शाइक है, तो कोई मज़ारात ओलिया पर हाजिरी देने के हवाले से इस तरह के जो काफिले से बन जाते हैं। तो अब इसमें वही बात है कि आप अपने शहर से जब 92 किलोमीटर मुसाफत पर आपको जाना है और उसके बाद फिर आपने मुख्तलिफ मज़ारात ओलिया पे मुख्तलिफ शहरों में आपको हाजिरी भी देनी है, तो फिर ये मुसाफिर ही रहेंगे क्योंकि दिन भी 10 हैं और फिर ये दिन भी किसी एक जगह पर 15 दिन 15 रातें रुकने का चूंकि है ही नहीं सिलसिला, तो ये पूरा सफ़र जो होगा ये कसर नमाजों की सूरत में ही जारी रहे।
ठीक है। अच्छे से हम अपने दीनी इस माहौल में दफसामी में मदनी काफले सफ़र करते हैं और तो वो बाद का 30-30 दिन के लिए भी होता है।
जी जी।
लेकिन 30 दिन उनका फिर ऐसा नहीं होता कि वो एक ही दिन एक ही जगह पर कहीं हों, ऐसों के लिए क्या रहनुमाई है कि 30 दिन के लिए वो जेन तो बना ले कि हम 30 दिन के लिए घर से जा रहे हैं मगर वहाँ नमाजों के हवाले से क्या करना होगा?
अब इसके अंदर भी ये ज़रूरी है कि आप जिस शहर से मदनी काफ़िले के मुसाफिर बन रहे हैं तो उस मदनी काफ़िले के मुसाफिर बनने की सूरत में ये देखना होगा कि आपका ये जो जिस जगह अपने शहर से आप दूसरी जगह जा रहे हैं यहाँ पर फासला कितना है। अगर वो फासला 92 किलोमीटर या उससे ज़ायद मुसाफत पर है तो फिर इस सूरत में ये मुसाफिर बन गए। मुसाफिर बनने की सूरत कब बनेगी? जबकि दूसरे मकाम पर 15 दिन 15 रातों से कम रुकने का सिलसिला हो। अब इसको एक मिसाल से यूँ समझ लें, जैसे काबुल मदीना से एक मदनी काफिले ने पहुँचना है मरकजुल औलिया लाहौर तक,
ठीक है,
और ये फिर वापसी भी आना है। अब ये लाहौर तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ शहरों में सफ़र होते होते फिर लाहौर पहुँचेंगे, फिर वापसी भी इसी तरह कराची तक आ जाएंगे। तो अब इसमें जैसे कोई यहाँ से हैदराबाद गया, वहाँ 3 दिन मदनी काफिले में रुका, फिर वहाँ ये कसर करेगा। कसर आम तौर पे जो मदनी काफिले के मुसाफिर होते हैं उन्हें कसर की हाजत पड़ती नहीं है क्योंकि उनका जो क्याम है वो मस्जिद
में ही होता है और वहाँ मुकीम इमाम के पीछे
पड़ रहे होते हैं। लेकिन बाई चांस कभी काफिला लेट पहुंचा और इशा की नमाज की जमात हो चुकी तो अब ये हैदराबाद में कसर करेंगे,
ठीक है,
जबकि सारे शुरका काफिला कराची के हम फर्ज कर रहे हैं। फिर ये कराची हैदराबाद में 2-3 दिन रुकने के बाद फिर ये आगे नवाबशाह जाते हैं, वहाँ पे भी 3 दिन का काफिला है, तो ये नवाबशाह में भी मुसाफिर हैं। इसी तरह होते होते ये अंदरून सिंध के किसी एरिए में मदनी काफिले में पहुँचने फिर लाहौर तक पहुँच जाते हैं, तो ये मुसाफिर ही रहेंगे क्योंकि जिस भी जगह जो 92 किलोमीटर की मुसाफत से बईद हो वहाँ अगर 15 दिन 15 रातें खास उसी जगह पर जब तक रुकने की नीयत ना हो तो ये जो शख्स है अगर से 30 दिन के इरादे से अपने घर से निकला है लेकिन जिस मकाम पर भी ये इसका क्याम होगा आर्जी तौर पर तो वो 15 दिन 15 रातें क्याम नहीं है जो कि मुद्दत इकामत है यानी मुकीम होने के लिए जरूरी है,
ठीक है।
तो जब वो 15 दिन से कम ही रुकना है और उमूमी तौर पर 3-4 दिन का एक सिलसिला होता है एक शहर के अंदर तो फिर ये वहाँ मुकीम नहीं बल्कि मुसाफिर ही रहेंगे अगरचे ड्यूरेशन पूरे 30 दिन का है,
ठीक है। अब इसमें शहर का भी देखा जाएगा या उसी एक जैसे अब एक किसी इलाके में गए हैदराबाद अफंदी टाउन के हैं कि यहाँ 3 दिन के लिए रुके और यहाँ से फिर आगे लतीफाबाद की तरफ, मुझे पता नहीं है अफंदी टाउन लतीफाबाद में ज्यादा फासला नहीं मतलब शहर के अंदर ही लतीफाबाद गए और उसी में ही आगे 3 दिन फिर आगे डिफेंस में वहाँ गुजार दिए, तो क्या
ये चूंकि हैदराबाद में अगर इनको 15 दिन 15 रातें
शहर के अंदर
शहर जो हैदराबाद शहर है तो उसमें 15 दिन 15 रातें जब तक पूरे रुकने का इरादा ना हो तो अब ये हैदराबाद में मुसाफिर ही रहेंगे। जैसे 12 दिन हैदराबाद का जदवल बनता है, अब हैदराबाद में मुख्तलिफ एरियाज हैं जैसे हमारे कराची के अंदर बड़े बड़े इलाके हैं तो एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाने में भी कभी 1-1 घंटा लग जाता है लेकिन वो कहलाता चूंकि कराची ही है तो इसी तरह हैदराबाद के भी मुख्तलिफ इलाकों में अगर 3-3 दिन की तरकीब से 4 मदनी काफिले बन जाते हैं ये तो ये हैदराबाद सिटी में है लेकिन 15 दिन 15 रातों से कम ही रुकना है तो मुसाफिर हैं। अगर इनका जदवल हैदराबाद में 18 दिन का है 18 दिन और रातें हैदराबाद में ही रुकना है लेकिन मुख्तलिफ एरियाज में तो ये हैदराबाद में ये मदनी काफिला जो 6-8 मकामात पे रहेगा ये मुकीम होगा क्योंकि हैदराबाद एक ही जगह है, एक ही जगह के मुख्तलिफ मोहल्लों में गोया आना जाना हो रहा है तो ये एक अलग सूरत है।
बहुत है मसाइले नाजरीन और ये हमें सीखने चाहिए इसमें, चाहे आप दीनी तौर पर कहीं जा रहे हो या अपने बिजनेस के लिए कहीं जा रहे हो इनका तयन तो वो कर लेना चाहिए। हाँ कुछ ऐसे अफराद होते हैं वो तयन कर ही नहीं सकते कि मैंने रहना कितने दिन है, वो कहते हैं जब काम हो जाएगा हमने चले जाना है, वो काम 4 दिन में हो रहा है, वो काम 12 दिन में हो रहा है या वो काम 18 दिन में हो रहा है, तो ये जमील साहब जो रोजाना नियत बना के बैठते हैं कि सुबह चले जाना है काम हो गया तो चले जाना है, अब ऐसे को वहाँ महीना भी रुक जाए तो मुसाफिर ही रहेगा?
मुसाफिर ही रहेंगे, वजह यही है क्योंकि उनकी कंटिन्यू 15 दिन 15 रातें रुकने का उस जगह इरादा ही नहीं है,
ठीक है।
उनका तो यही है कि जब मुझे मेरी ये मतलूबा चीज मिल जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन वो आसरे पर आसरा देते देते किसी को अगर हफ्ते या 10 दिन के आसरे के बजाय वो 20 दिन वहाँ पे उसको रुकना पड़ जाता है तो उसकी चूंकि नियत यहाँ पे 15 दिन 15 रातें रुकने की नहीं है तो फिर ये मुसाफिर रहेगा मुकीम नहीं बनेगा,
ठीक है जी। मजीद सवाल
सर, मेरा सवाल ये है कि जब आदमी फौत होता है उसका जब चेहरा देखता है मस्जिद का तो क्या पढ़ना चाहिए?
ठीक है मजीद।
मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि अगर कोई शख्स घर से 92 किलोमीटर सफर पे निकले इस नियत से कि मेरा फलां काम इतने दिन में हुआ तो घर वापस आऊंगा, अब 2 या 3 दिन लग जाते हैं तो इसमें नमाज किस तरह अदा करे, कसर या अदा?
ठीक है, हमने तकरीबन इसका भी जवाब जो है वो दे ही दिया है। 92 किलोमीटर है और वहाँ 2 या 3 दिन आपको लगते हैं तो आप मुसाफिर हैं, रास्ते में भी आपने कसर नमाज पढ़नी है, वहां भी आपने कसर नमाज है वो पढ़नी है। अच्छा, जो हम कह रहे हैं कि मुकीम हो जाएगा वहां 18 दिन 15 दिन से जायद जो भी उसने गुजारा 15 रातों से जायद, तो अब ये जब वापसी आएगा तो ये रास्ते में क्या करेंगे?
अच्छा, जैसे यही कि कराची का रहने वाला अगर लाहौर ये 20 दिन के इरादे से निकला
जी
तो ये लाहौर पहुंचने तक जो दरमियान का सफर है कराची की हदूद से निकलने और लाहौर की हदूद जिसमें इनका इरादा ही 20 दिन लाहौर में क्याम करने का है तो लाहौर की हदूद शुरू होने से पहले जो दरमियान में सफरी रास्ता है, इस रास्ते में अगर इनको नमाज पढ़नी पड़ती है तो इसमें चार रकत वाली फर्ज नमाज में कसर करेंगे, लेकिन जब लाहौर पहुंच गए और वहां पे इनका इरादा 20 दिन रुकने का है, 20 दिन 20 रात में लाहौर शहर के अंदर ही, ये नहीं कि लाहौर से फिर किसी और शहरों में भी जाने का इरादा हो, ऐसा नहीं, लाहौर में ही रुकने का इरादा, तो लाहौर में अभी मुकीम हो गए। अब जब लाहौर छोड़ेंगे और कराची की तरफ ट्रेवल करेंगे तो लाहौर की जो आबादी वगैरह से निकल जाने और लाहौर की हदूद से निकल जाने के बाद अब ये फिर मुसाफिर हो गए, ये उस वक्त तक मुसाफिर रहेंगे जब तक अपने शहर कराची की हदूद में दाखिल ना हो जाए।
बाद औकात हदूद भी शहर से मुत्तसिल कुछ किलोमीटर तक फैली हुई होती है जहाँ तक आबादी का सिलसिला चल रहा हो, तो ऐसे में फोन भी कर रहे होते हैं बाद औकात कि भाई हैदराबाद से तो आ गए अब यहाँ तक पहुँचे, अब यहाँ तक पहुँचे तो क्या मशवरा दें उनको, थोड़ा सा और आगे आ जाएं कराची आ जाएं।
नमाज पढ़ने वाले को तो हम ये कि भाई अगर शक शुबे है वाली सूरत है तो बेहतर यह है कि यकीनी सूरत को इख्तियार कर लिया जाए, और यकीनी सूरत यह है कि अगर हम शहर कराची की हदूद में आकर ही नमाज पढ़ लेंगे और वक्त की गुंजाइश भी है तो अपने हदूद की बाकायदा हदूद में दाखिल हो जाएं, आबादी में दाखिल हो जाएं, फिर नमाज पढ़ लें, तो इस तरह यह कि शक शुबे से बालातर होकर नमाज पढ़ी जाएगी। वरना यही है कि जिस जगह आपकी आपका सफ़र जारी है ये आबादी में आप ना हों, अगरचे दूर दराज दाएं बाएं आबादियां हो लेकिन जो आपका सफर हो रहा है ये सफर आबादी में ना हो तो फिर आप हुदूद से निकल गए।
ठीक है, मैयत का चेहरा देख के क्या कहें?
किसी भी मुसलमान मैयत की खबर सुनते हैं तो उसमें जो मसनून दुआ है इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसको पढ़ा जाता है। बाकी यह है कि उसकी मगफिरत और उसकी बख्शिश की दुआ की जाए, कोई खास ऐसी दुआ जो उसके चेहरे को देखकर पढ़ने वाली है ऐसी मुझे मालूम।
वैसे भी चेहरा देख कर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ के या अल्लाहुम्मा इग़फिर हु वरहम हु या उर्दू में कोई दुआया कलिमात कह दें, और जो बाद ऐसे होते हैं माशाल्लाह जिनके चेहरे देख कर ही आदमी को अपनी भी गोया के मौत याद आती है और उनके चेहरे देख कर भी एक खुशी वाला भी इजहार होता है इस तौर पर कि वो अपना ईमान सलामत लेकर वो गया है, तो इस तौर पर मगफरत की दुआ कर ली जाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ लें। सुबहान अल्लाह भी कोई चेहरे को देखकर पढ़ता है तो उसमें भी, और आमतौर पर लोगों के ये कलिमात जारी रहते हैं उनकी जुबानों पर, कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं। मजीद सवाल।
मेरा नाम अरबाब अहमद है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कमेटी रखते हैं मुंह में ये रखना जायज़ है? शरीर रहनुमाई फरमा के हमें बताएं।
ठीक है भाई, कमेटी रखना। मजीद।
मेरा नाम बिलाल सत्तारी है, मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि नाबालिग जो होता है वो अगर हक तलफी किसी की हकूक इबाद में से कोई तरफ करता है तो उसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा, और अगर वो इसी हालत में इंतकाल कर गया तो उसका हक किस तरह अदा किया जाएगा, क्या गुनाहगार होगा, या इस हवाले से क़यामत के दिन उसके लिए क्या हुक्म होगा, जवाब इरशाद फरमा दीजिए।
जी जमील साहब,
नाबालिग के हवाले से शरीयत का हुक्म यह है कि ये मुकल्लफ तो नहीं है, यानी किसी को अगर इसने ईजा पहुंचाई, किसी का हक तलफ किया है तो गुनाहगार तो नहीं है, लेकिन हक तलफ करने की एक सूरत यह होती है जिसमें किसी का माल ज़ाय किया है, तो नाबालिग अगर किसी का माल ज़ाय कर दे, किसी की कोई चीज़ तोड़ देता है, तो इस सूरत में नाबालिग अगरचे गुनाहगार ना हो लेकिन जिसका हक ज़ाय किया, जिसकी कोई चीज़ तोड़ दी ज़ाय कर दी है, तो उसका तावान नाबालिग के माल से अदा किया जाएगा। अब जो नाबालिग है उससे उसका तावान ले लिया जाए, उसके वालिद उसके माल से तावान अदा कर दें, और अगर नाबालिग का इंतकाल हो चुका है और जिसकी कोई शे उस बच्चे ने नाबालिग ने तोड़ी थी ज़ाय की थी, तो जो साहिब हक है अगर वो अपने हक को वसूल करना चाहता है तो बच्चे की इंतकाल के बाद जो उसने चीज़ें छोड़ी हैं ममलू का, जो अब उसका तरका बन जाएंगी, तो उस तरके से वो अपनी चीज़ का इवज तावान वसूल कर सकता है। रहा मामला गुनाहगार होने के हवाले से, तो नाबालिग जब तक बालिग नहीं होता उस वक्त तक कोई ऐसा काम जो बालिग करे और गुनाहगार हो तो ना बालिग गुनाहगार नहीं होता, जब तक वो ना बालिग है कि उससे शरीयत मुतहरा का जो कलम है वो उठा हुआ है। तो इस हवाले से नाबालिग गुनाहगार तो अगरचे नहीं, लेकिन हमें अपने बच्चों को इस जाविये से ज़रूर तरबियत देनी चाहिए कि ये चीज़ किसी की ज़ाय ना करें, ऐसा ना करें, इसको तकलीफ ना पहुंचाएं ताकि बच्चों की आदत पड़े। तो वो तकलीफ जो पहुंचा रहे होते हैं, कहीं बाज बच्चे कुछ समझदार हुए कि हम गुनाहगार तो नहीं हो रहे, लिहाजा तकलीफ पहुंचाना वो समझेंगे हमारे लिए जायज़ हो जाएगा। तो ये बच्चों की तरबियत अभी से करनी है कि तकलीफ ना पहुंचाएं, किसी की हुटिंग ना करें, किसी की कोई चीज़ लेके तोड़ ना दें, ज़ाय ना कर दें, खा ना लें। तो ये तरबियत करेंगे तो इंशाल्लाह ये बच्चों की इब्तदाई मरहले में जो ऐसी तरबियत हो जाती है जिसमें वो अमवाल गैर में नाहक तसरुफ से बचते हैं, तो ये तरबियत, ये प्रैक्टिस शफीक भाई आगे पूरी लाइफ तक रहती है।
बिल्कुल।
और अगर माँ बाप ही बच्चों को देख रहे हैं कि इसने सब्जी वाले का एक टमाटर उठा लिया, फल उठा लिया और मना नहीं कर रहे, अब मना ना करना ये गोया के बच्चे की को मिसगाइड करना है, इसकी गलत तरबियत है। आज ये अगर एक टमाटर उठाता है, आज ये एक अमरूद या किन्नू उठा लेता है, तो कल को फिर ये डकैत या चोर, इस तरह की चीज़ों की तरफ बच्चे बढ़ते चले जाते हैं। पेंसिल चुराने की आदत वो आगे फिर बैंक लूटने तक उन बच्चों को ले जाती है। तो यूं बच्चों की तरबियत करें, जहां इन्होंने अगर किसी की कोई चीज़ तलफ की है तो बच्चों के पैसों से ही दूसरे बच्चे का हक दिलवाया जाए।
वाह, ठीक है, ये भी एक तरबियत का हिस्सा है पूरा। और शरीफ ये तो हुक्म है जब उसका माल ही उसने ज़ाया कर दिया। बीसी कमेटी जो आम नॉर्मल डाली जाए बगैर किसी की कोई इसमें शर्त या कुछ और मामला, क्या कहेंगे?
नॉर्मल जो कमेटियां हैं कि एक शख्स को बड़ी रकम दरकार होती है और बड़ी रकम जमा करना ये हर शख्स के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि घर में अगर रकम होगी तो खर्च हो ही जाती है। तो इसलिए फिर एक तरीका अवाम ने आपस में ही एक तआवुन के साथ के एक बीसी मैनेजर होता है, वो बीसी चला रहा होता है और लोग मेंबर होने की हैसियत से रकम जमा करवा रहे होते हैं। तो अगर इसमें किसी किस्म की कोई नाजायज शर्त ना हो, अब नाजायज शर्तों के अंदर ये होता है कि अगर किसी ने वक्त पर बीसी कमेटी अदा नहीं की तो उसके ऊपर पर डे के हिसाब से कोई जुर्माना आयद कर दिया जाता है, 1000-2000 रुपये, उस पर बड़ी बीसियाँ हैं तो 1000-2000 तक जुर्माना उस पर लागू कर दिया जाता है, ये जायज़ नहीं है।
ठीक है,
बाकी ये कि जितनी रकम उसने जमा कराई उतनी रकम उसको अदा की जाएगी, और अगर बीसी का नंबर दरमियान में खुल जाता है तो अब जो उसने जमा कराई थी वो रकम उसको वापस मिल चुकी होती है, मजीद जो रकम मिलती है वो उसके ऊपर कर्जा बन जाती है, अब वो मंथली या वीकली जो भी अंदाज है बीसी का वो वापसी कर रहा होता है,
वापसी कर होता है। अच्छा, इसमें तो चलो पूरी पूरी बीसी देनी है, बात दोस्त आपस में मिलके जो बीसियां डालते हैं इनका ये होता है कि जिसकी बीसी निकली खाना भी खिलाएगा, ठीक है, अब ये इस तरह की जो चीजें एक्स्ट्रा उन पे, अच्छा इनमें कुछ ऐसे होते होंगे कि जिनका आपस में इस तरह का ताल्लुकात पहले से ही इस तरह है, लेकिन ये बीसी वाले के ऊपर लाजिम ऐसा करार देने में,
बीसी वाले के जिम्मे लाजिम कर देना कि अब आपकी बीसी खुली है अब आप खाना खिलाएंगे, तो देखें अब ये लाजिम कर देने वाली जो सूरत है इसमें बाज़ औक़ात ना चाहते हुए भी एक आदमी को अपना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, वरना दोस्तों की सुननी पड़ेगी। और सुनने का मतलब ये है कि सुनेगा और नहीं खर्च करेगा तो हूटिंग होती रहेगी, दिल आजारी होती रहेगी, तो इन दिल आजारियों से बचने के लिए अगर वो खिला रहा है तो फिर ये सूरत, ये रिश्वत की सूरत इख्तियार कर लेती है,
जिसमें अपनी इज्जत और सब चीजें बचाने के लिए,
अपनी इज्जत का तहफ्फुज के पेश नजर आदमी गोया के मुंह बंद करने के लिए खिला रहा है। लेकिन अगर खिलाने वाला मोहब्बत में खिला रहा है और ये शर्त वाला वो पहलू ना हो, यानी लाजिम ना किया जाए, अज खुद अपने दिल से एक आदमी इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है मैं आपको खिलाऊंगा, मेरी बीसी आ रही है तो कुछ कुशादगी हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको खिलाऊंगा। तो इस तरह अगर हर एक दोस्त यूं करे, मजबूर कोई भी ना हो,
सही है।
ये दावत करने पर मजबूर कोई ना करे, ना ही वो मजबूरन खिला रहा हो बल्कि मसरूरन खुशी के साथ सुरूर की हालत में खिला रहा हो तो फिर तो हरज नहीं है।
ठीक है जी, मजीद सवाल।
मेरा नाम मोहम्मद हमजा, मेरा मुफ्ती साहब से एक सवाल है कि नहर में नहाने के बाद वजू करना जरूरी है?
नहर में नहाने के बाद खुश्क थी या पानी भी था उसमें, ये थोड़ा सा इनसे यानी इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन नहाए हैं तो नहाना तो पानी से ही होगा।
जब नहाए हैं तो फिर ये गोते भी लगाए होंगे अच्छी तरह, कोई ट्रायल उसमें होगा, ट्राई कर रहा होगा। तो बहरहाल नहर के अंदर जब आदमी डुबकी लगाता है तो, या जिसको हम कहें नहाना, तो नहाने के अंदर सर भी गीला हो जाता है, चेहरा भी, हाथ पांव सब धुल जाते हैं, तो जो आज़ाए वुजू हैं उन पर अच्छी तरह पानी बह जाए और कोई चीज ऐसी इन आज़ा पे लगी हुई ना रहे कि जो जिसकी वजह से पानी ना पहुंचे, और उमूमी तौर पे ऐसा होता
नहीं,
तो इस तरह वुजू भी हो जाता है। वुजू होने की सूरत में अगर किसी ने नमाज पढ़ ली तो नमाज भी अदा हो जाती है, लेकिन बकायदा वुजू के लिए नियत होना, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना, जो वुजू की अपनी सुन्नतें हैं वो बहरहाल उस इस तरह के वुजू हो जाने से अदा नहीं होती,
अदा नहीं होती। ठीक,
जैसे कुल्ली करना है, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है, इसी तरह तीन बार वुजू के इब्तिदा में,
यानी सुन्नतें और इसके मुस्तहबात,
वो मुस्तहबात और सुन्नतें आम तौर पे रह जाती हैं, लेकिन बहरहाल वुजू होना जिसको कहेंगे वो अदा हो जाता है।
ठीक है, इसी तरह के ये ऐसी बारिश तेज होती है जिसमें ये शरायत पाई जाए, दो कतरे बह जाए तो उसमें ही वुजू हो जाएगा बारिश तेज में।
जी बिल्कुल, इस तरह
उसमें तो नियतें भी कर सकते हैं ना, यानी वहां तो बारिश में भी अगर ये पानी में ही नियतें कर लेते हैं ये
बिल्कुल, अगर ये वुजू नहर के अंदर ही जिस तरह हाथ धोना है और कुल्ली करना है, नाक में पानी चढ़ाना है, मसा करना, ये सारी चीजें अगर कर लेते हैं तो भी वजू तो हो ही रहा है।
जी, वो फुका इकराम ने एक मसला लिखा ना कि मैयत ही कोई बहती हुई आ रही है, पानी में बहती हुई आ रही है, तो कहा कि अब इन पर भी तो फर्ज है, एक गुसल देना भी तो फर्ज है ना, जो लोगों ने गुसल देना है अगरचे वो पानी में आ रही मैयत, तो फिर जब उसको लें और फिर उस नियत के साथ उसको कुछ जो है
तीन दफा मतलब मैयत को
पानी में
वो डुबकी देने से लेके उसका गुसल का जो जिंदा लोगों पर फर्ज है, फर्ज किफाया है कि गुसल मैयत अदा करना है, तो अगरचे मैयत तो पानी में कई दिन से या कुछ घंटों से तर बसर वो गुसल तो उसका अच्छी तरह उसके एतबार से हो चुका है, लेकिन जिंदा लोगों के एतबार से जो इन पर फर्ज है, फर्ज किफाया गुसल मैयत, उसकी अदायगी के लिए फुकहा इकराम फरमाते हैं कि उसका नहर के अंदर होना वो किफायत नहीं करेगा, ये फर्ज अब हमने अदा करना है, तो चाहे तो उसको नहर से निकालने के बाद फिर बकायदा
गुसल दें,
या फिर नहर के अंदर ही उसको गुसले मैयत की नियत से मतलब दो दफा उसको डालें।
इतने यानी इस तरह के जो अहकामात और मसाइल हैं हमारे उलमा इकराम ने, फुका इकराम ने, और ये तो बहुत पुरानी हमारी सब किताबों में, ऐसे कदीम किताबों में ये मसाइल जो है वो लिखे हुए हैं। पढ़ने का शौक़ हो नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने अहकामात सीखते हैं, समझते हैं, कुछ बयान किए जाते हैं, शौक़ रहना चाहिए। ये शौक़ ख़वातीन में भी हो जो अपने मसाइल सीखने के हवाले से कम अज़ कम जो खुद दरपेश हैं, इसी तरह अपने घर के बच्चों के हवाले से, बिलखसूस बेटियों के हवाले से कि जिनकी उम्रें वो बढ़ रही हैं और वो एक बलूगत के करीब पहुँच रही, तो उसके ऊपर भी घर के माँ बाप बतौर ख़ास वालदा या कोई ऐसा इंतज़ाम हो कि जिसके ज़रिए से उनको भी अहकामात और वो आगाही उन तक पहुँचे। इस तरह बेटा है वो इस उम्र को पहुँच रहा है, तो ये हमने ही समझाना है, शुरू में ऐसी तरबियत करेंगे, कुछ चीज़ें उसको सीखनी तो हैं ही हैं, लेकिन बजाय ये कि वो इर्द गिर्द या किसी ऐसे ज़रिए से सीखता है कि जिसके नुकसान उसको ज़्यादा हों, तो उसके बजाय उसको ज़िम्मेदारी के साथ अगर उस मसले को हल कर लिया जाएगा तो ज़िंदगी भर एक याद रहेगा, और बेहतरीन तोहफ़ा माँ बाप का अपनी औलाद के लिए उसकी तरबियत करना, ये बेहतरीन अतिया तोहफा। जायदादें छोड़ कर जाए कोई आदमी, पैसा छोड़ कर जाए, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, सब कुछ है, लेकिन इसे रिवायत में बेहतरीन नहीं कहा गया तोहफा, बेहतरीन तोहफा वालिद का अपने बच्चों के लिए उनकी तरबियत करना, उनकी तरबियत करना, इस पर जो खर्च कर लिए, खर्च भी अगर होना पड़े तो इस पर खर्च भी करना चाहिए ताकि ये फरीजा भी आसान तरीके से हल हो और उनको ये इल्म भी हासिल हो जाए। मजीद आपके सवाल की तरफ।
इमाम जाफर सादक रदी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी से या ताबी थे, इसके बारे में भी रहनुमाई फरमा दीजिए।
इमाम जाफर सादक रदी अल्लाह ताला अन्हो ताबईन में से, आपने दो साहबा के दीदार किया है,
दो साहबा इकराम अलैहिम रिदवान की जियारत करना इनसे साबित है। इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह भी ताबई बुजुर्ग हैं। इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह चूंकि कूफा में थे और कूफा में बकसरत साहबा इकराम अलैहिम रिदवान तशरीफ ले आए थे, तो इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से आता है कि आपने कम अज कम छः साहबा इकराम अलैहिम रिदवान की जियारत की और उनसे अहादीस सुनी भी है। तो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द भी हैं।
शागिर्द हैं, यानी यूं के उन्होंने दो साहबा से मुलाकात या उनका वो लिखा साबित है, और यहाँ इन्होंने मुतादद
कूफा में ज्यादा साहबा इकराम अलैहिम रिदवान مدینہ منورہ سے آگے بھی ہجرت
بالکل دین
اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے حوالے سے پھیل گئے تھے، تو کوفہ اس وقت مرکز علم بھی تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی وہیں تشریف لے آئے تھے، تو اس طرح علم کا مرکز تھا کوفہ. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سارے اساتذہ سے بھی علم حاصل کیا، 4000 تعداد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی بیان کی جاتی ہے، ان میں سے ایک روشن استاد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے پاس امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال تک آپ نے ان سے تحصیل علم کیا ہے.
ماشاء اللہ. ایک پروگرام میں آپ نے بڑا نقشہ بنا کے لائے تھے ایک دفعہ، میرا خیال پچھلے سال کیا تھا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک پر، جو ہمارا دوسرا سلسلہ تھا علم کی باتیں، اور اس کے اندر پورا آپ نے وہ بیان کیا تھا کہ ان کے نسب کے حوالے سے بھی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے والد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد
امام زین العابدین،
ان کے والد
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان کے آپ شہزادے. تو یوں آپ کے والد کی طرف سے اور آپ کی والدہ محترمہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پڑپوتی تھیں، تو یوں دیکھیں صحابہ کی آپس کی محبتیں بھی ہیں کہ ایک دوسرے کے یہاں یہ باقاعدہ بیٹیاں دیتے، رشتے کرتے، اور یہ ان کی بالکل بیین اور واضح دلیل کہ آپس کی ان کی کتنی گہری محبت اور آپس کے تعلقات بھی. تو کچھ سوالات میسج میں آئے جمیل صاحب کہ کل نیاز نہیں کی تھی اور نیاز کر سکتے ہیں ابھی بھی کنڈوں کی؟
بالکل، کونڈے کی نیاز یا کھیر پوری کے ذریعے نیاز، یا آپ نے گھر میں جو بھی کھانا تیار کیا ہے اس پر بھی نیاز دی جا سکتی ہے. نیاز فاتحہ کے لیے خاص کوئی میٹھی ڈش ہی ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ چونکہ نیاز فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جب ہمارے گھروں میں تقریبات ہوتی ہیں تو اس میں بھی میٹھے کا اہتمام عام طور پہ ہوتا ہے، تو مہمان بھی آتے ہیں، اطراف میں تقسیم بھی کیا جاتا ہے، تو بہتر سے بہتر اچھے سے اچھی ڈش بنانے کا لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اور یہ اچھی بات ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی نیاز فاتحہ جن گھروں میں ہوتی ہے تو خواتین بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا تیاری کر رہی ہوتی ہیں، اور نیاز فاتحہ کے لیے کوئی دن ایسا مقرر نہیں ہے کہ اگر اس دن تک کر لی تو پھر یہ اسال ثواب تو ہو جائے گا، یہ ٹائم گزر گیا تو اب اسال ثواب نہیں ہو سکتا. تو 15 رجب کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، 15 رجب سے پہلے بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص کر جو کونڈوں پر بالخصوص ایک نیاز کا سلسلہ ہے وہ 15 سے پہلے بھی شروع ہو چکا ہوتا ہے، بلکہ یہ پورے مہینے تک آپ دیکھیں گے آپ کے مختلف محلوں میں یہ نیاز فاتحہ کا سلسلہ رہے گا. تو اگر کسی نے کل نیاز نہیں کی، آج بھی کر سکتا ہے، کل بھی کر سکتا ہے، یہ پورے سال میں جب چاہے کرے، تو کوئی اس کی لمیٹیشن نہیں ہے کہ اتنے عرصے تک کر لینا ضروری ہے، اور یہ اسال ثواب کر لینا بھی ایک مستحب عمل ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اور لوگوں کی آسانی کے لیے دن مقرر کر دیا جاتا ہے، اور باقی اس کو کوئی تعین اہل سنت کو ہی اس کو معین اور لازمی نہیں سمجھتے کہ اس کے علاوہ اسال ثواب نہیں ہوگا. آخری سوال شامل کرتے ہیں بہنوں کی طرف سے، خواتین کی طرف سے، کہ کیا خواتین مردوں کے کپڑے سلائی کرنے میں کوئی حرج تھا؟
یعنی اسلامی بہنیں اگر مردوں کے کپڑوں کی سلائی کی ٹیلرنگ کرتی ہیں، سلائی کرتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مردوں کے کپڑے سینا ہو یا خواتین خواتین کے کپڑے سیئیں یا بچے بچیوں کے کپڑے سیئیں اور اس پہ سلائی اجرت لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سلائی کے ذریعے سے کمانا یہ کسب کا ایک طریقہ کار یہ بھی رہا ہے، لیکن جو بھی کام ہو جو اجرت پر کیا جا رہا ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اجرت معین ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے،
اب بچوں یا بچی کے کپڑے کی سلائی اتنی ہے تو لیڈیز بڑی ہیں ان کی سلائی اتنی ہے، پھر مختلف کپڑے
کے اور ریٹ،
جینٹس کے اور ریٹ ہوں گے، پھر مختلف ڈیزائن کے اعتبار سے ریٹ بڑھ جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں، تو یہ پہلے سے ہی طے کرنا ضروری ہے. پھر لیڈیز کے اندر یہ چیزیں بھی مزید بڑھ جاتی ہیں کہ اس میں بیل وغیرہ کتنی لگے گی تو بٹن کیسے ہوں گے، تو یہ سب چیزیں پہلے سے طے کر لیں کہ یہ اضافی چیزیں یہ درزن اسلامی بہن ارینج کریں گی یا جو سلوانے آئی ہیں وہ ان چیزوں کا ارینج کر کے ان کو دیں گی.
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. آپ نے پورا ہی ان کے جو بزنس، ظاہر ہے یہ بھی ایک کمائی کا اور آمدنی کا ذریعہ ہے، تو یہ اس کے شرعی احکامات ہیں. اور خاتون اگر مردوں کے کپڑے سیتی تو عام طور پہ ناپ تو ظاہر ہے وہ اپنا جوڑا ہی ساتھ بھیجتے ہیں، اس طرح ناپ لینے میں تو حرج نہیں ہے کوئی؟
عمومی طور پہ جو دیکھا گیا نا، جو اس طرح کی کسب کرنے والی خواتین ہیں وہ لیڈیز ہی کے کپڑے سی رہی ہوتی ہیں، اور اگر جینٹس کے کپڑے کوئی سیے بھی تو یا تو شوہر کے کپڑے سی رہی ہوتی ہیں، یا بھائیوں کے یا بیٹوں کے کپڑے سی رہی ہوتی ہیں، یا اپنے رشتہ داروں میں ایسے افراد جو ہیں جو محارم ہیں تو ان کے سی رہی ہیں۔ تو ناپ لینے کا جہاں تک تعلق ہے تو کوئی بھی خاتون غیر محرم مرد کے کپڑوں کا ناپ یعنی اس کی باڈی کے اعتبار سے جتنا لیا جاتا ہے وہ نہ لیں۔ اگر کوئی اچھی ٹیلر ہیں خاتون اور وہ اچھے کپڑے سیتی ہیں تو مرد کے کپڑے جو اس کے ناپ کے ہیں وہ منگوا لیا کریں، باقاعدہ پھر خود ناپ نہ لیں۔
ٹھیک ہے، یہ دونوں طرف کا مسئلہ ہے، یہ ادھر سے بھی، اور بعض اوقات جو جینٹس ٹیلر ہوتے ہیں اور مرد ہوتے ہیں ان کے پاس خواتین بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کا کیا؟
اس میں بھی جو مرد ہیں وہ اجنبی ہیں، اور اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے کپڑوں کا ناپ لیں تو کپڑے ہی منگوا لیں، ان کپڑوں کے مطابق کپڑے، یا چھوٹے کرنے ہیں بڑے کرنے ہیں لینتھ کتنی رکھنی ہے جو بھی اس وقت ضرورت ہے وہ اس میں نوٹ کر لیں، لیکن کسی بھی اجنبی عورت کے کپڑے پہنے ہوئے کپڑوں کا ناپ لینا یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔
ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا۔